अध्याय 8 पृष्ठ संख्या 104 परिशिष्ट एक ब्रज भाषा साहित्य में ईश्वर। यह युग विश्लेष का युग है। बहुत से लोग यह सुनकर कह उठेंगे कि हरगिज नहीं, यह युग सामूहिक समुत्थान का है। वस्तुतः वर्तमान युग का समूह संघात विश्लेष से भी गया गुजरा है। एक युग था जब एक देश की चिंताधारा और साधना पद्धति अनायास ही दूसरे देश की अपनी चीज हो जाती थी। उन दिनों न तो प्रोपेगेंडा ही था और न इनके साधन ही, फिर भी लोग सहज भाव से दूसरों की विशेषता ग्रहण कर लेते थे। पर आज राष्ट्रीयता की लहर इतनी तेज है कि हम किसी भी विदेशी वस्तु को बिना संदेह और शंका की दृष्टि से देखे नहीं रहते। देश की चार दीवारी पार करके यह संकीर्णता काल में पहुंच चुकी है। एक स्वदेश प्रेमी अंग्रेज भारतीय चित्रकला की सुंदरता पर तब तक मुग्ध होना नहीं चाहता जब तक उसमें ग्रीक या रोमन प्रभाव का प्रमाण न मिल जाए। यहाँ तक तो खैर है, पर मामला और भी पेचीदा होता जाता है जब हम ग्रीस या इजिप्ट की कला में उसी प्रकार की नैतिकता जैसी इस युग में है नहीं पाकर नाक भौ सिकोड़ने लगते हैं। एक अंग्रेज पंडित ने ग्रीक कलाकारों के बारे में कहा था कि ग्रीक चित्त की किसी प्रकार की सृष्टि से तृप्त नहीं होता था जब तक कि उसे मनुष्य के आकार या भाव में से होकर न गुजरना पड़े। प्राचीन कवियों ने जड़ प्रकृति की वास्तविक रूप में कभी व्याख्या नहीं की। उन्होंने खेतों में या मेघ पुंजों में आध्यात्मिकता का आरोप कभी नहीं किया। पर इसीलिए अगर कोई ग्रीक काव्य में रस न पाए तो उपाय क्या है, प्रश्न चिन्ह। ग्रीक कवियों के संबंध में इस अंग्रेज पंडित ने जो कुछ कहा है वह बात ब्रजभाषा के कवियों के बारे में कही जा सकती है। उनमें इतना और जोड़ दिया जा सकता है कि ब्रजभाषा कवि की संपूर्ण तृप्ति तब होगी जब वह इस मानव भावना को कृष्ण या राधा में पर्यवसित कर दे। ब्रजभाषा का कवि एक विचित्र रहस्यमय व्यक्ति है। वह अपने मनोभावों को राधा और कृष्ण या गोपी और ग्वाल के रूप में इस प्रकार प्रकट करेगा मानो वह पृष्ठ संख्या 105। इस व्यापार में एक तटस्थ साक्षी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी साधना में व्यक्ति का कुछ महत्व नहीं है। पर संसार के अन्य कवियों के नियम के प्रतिकूल अपनी प्रत्येक कविता में अपना नाम इस सावधानी और सतर्कता से रख देगा मानो उसके व्यक्तित्व का न होना किसी भारी अपूर्णता का द्योतक है। उसके कृष्ण जिस प्रकार अनादि अनंत होकर भी व्यक्तित्व की अवहेलना नहीं करते, वह भी उसी प्रकार पूर्व तटस्थ होकर भी अपने व्यक्तित्व का मोह नहीं त्याग सकता। ब्रजभाषा के कवि के इस मनोभाव को समझने के लिए संस्कृत वांग्मय के अलंकार शास्त्र पर एक सरसरी निगाह दौड़ाए बिना काम नहीं चलेगा। संस्कृत अलंकार शास्त्र की प्रारंभ में दो शाखाएं थी। एक में तो नाटक के रस और उसके आलंबन, नायक नायिकाओं की विवेचना, और दूसरे में संस्कृत के फुटकर श्लोकों के अलंकारों की समीक्षा हुआ करती। बाद को ये दोनों धाराएं एक में मिल गईं। इसी समय ध्वनि संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ध्वनि या व्यंग्य अर्थ को समझने के लिए शब्द की तीन शक्तियों को समझना आवश्यक है। ये तीन शक्तियां हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहली से शब्द का प्रचलित अर्थ जाना जाता है, दूसरी से उससे संबद्ध अन्य अर्थ, और तीसरी शक्ति इन दोनों से भिन्न अर्थ ध्वनित करती है। उदाहरणार्थ, अगर गुरु किसी विद्यार्थी से कहता है कि सूर्य अस्त हो गया, तो इसका अभिधेय अर्थ वही होता है जो इस वाक्य के शब्दों का कोश व्याकरण सम्मत अर्थ है। पर व्यंग अर्थ या ध्वनि यह है कि पाठ बंद करो, संध्या वंदन का समय हो गया। कहना नहीं होगा कि यह अर्थ बिल्कुल निराला है, सूर्य अस्त हो गया है वाक्य के किसी अंश से इसका संबंध नहीं है। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य अभिनव गुप्त पाद इस मत की पुष्टि के लिए शास्त्र प्रमाण खोजने लगे, क्योंकि उस युग में कुछ आप्त प्रमाण दिए बिना किसी मतवाद की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती थी। फलतः व्याकरणों के स्फोटवाद का सहारा लेना पड़ा। स्फोटवाद का आश्रय पाकर ध्वनि संप्रदाय गठित हो उठा, परंतु रस को संपूर्णतः ध्वनि के अंतर्गत करना अभी बाकी था। भारत के नाट्य शास्त्र के रस सूत्र का आधार पाकर अभिनव गुप्त ने इस काम को भी योग्यता के साथ कर डाला। हम अधिक सूक्ष्म विषयों की अवतारणा नहीं करना चाहते, पर ब्रजभाषा के कवि की तटस्थ वृत्ति का सूत्र इसी रस सूत्र की व्याख्या में पाया जाता है। अतः उसकी सामान्य चर्चा कर देना अनुचित और अस्थान प्रयुक्त नहीं समझना चाहिए। अभिनव गुप्त से पूर्ववर्ती एक भट्ट नायक नामक आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या करते समय बताया था कि नाटकीय रस की अनुभूति दर्शक को साधारणीकरण व्यापार के द्वारा होती है। दर्शक राम से रामत्व और सीता से सीतात्व दूर कर उन्हें साधारण स्त्री पुरुष के रूप में ही देखता है। यहाँ तक कि वह अपने से मैंपन को अलग कर एकदम साधारण रूप में हो जाता है। ऐसा अगर न होता तो सामाजिकों के सामने राम सीता का प्रेमालाप सुना सकना असंभव था। पृष्ठ संख्या 106, उसमें लज्जा आदि विविध बाधाएं उपस्थित होती। अभिनव गुप्त ने इस मत में संशोधन किया। वे कहते हैं कि दर्शक के हृदय में जो पूर्व अनुभूति विद्यमान रहती है, वस्तुतः वही रस बोध का कारण है। साधारणीकरण व्यापार केवल उस अनुभूति का रास्ता साफ कर देता है। पंडित राज के शब्दों में चित्त शक्ति भग्नावरण हो जाती है। उत्तरकालिक अलंकारिकों में से अधिकांश ने इस साधारणीकरण व्यापार की उपयोगिता स्वीकार की है। ब्रजभाषा के कवियों ने तो इसमें किसी दिन संदेह ही नहीं किया। इस प्रकार जिस समय ब्रजभाषा की कविता का बाल्य जीवन प्रारंभ हो रहा था, उस समय भारतीय काव्य में व्यक्तित्व की महत्ता घट चुकी थी। साधारणीकरण व्यापार ने आसन जमा लिया था। कवि का इम्प्रेशनल रूप अधिकाधिक विकसित हो रहा था। ब्रजभाषा की कविता के दुर्भाग्य से उस समय विदेशी शासन का प्राबल्य था, इसीलिए श्रृंगार साहित्य की यह तटस्थता जो स्वतंत्रता के युग में भूषण हो सकती थी, इस युग में दूषण हो गई। आज के सुधारकों को पानी पीकर ब्रजभाषा साहित्य को कोसने का अवसर मिल गया। तज्ञों से छिपा नहीं है कि भारत के सुवर्ण युग का संस्कृत साहित्य श्रृंगार के रंग में ब्रजभाषा से कम नहीं रंगा है, बल्कि कुछ अधिक। ब्रजभाषा में तो ये बातें वहीं से रफ्तनी की गई। जर्मन के सुविख्यात चित्रकार वॉन उहडे ने जब ईसा मसीह के चित्रों को आधुनिक परिच्छद में सजाना शुरू किया था, तो कहते हैं यूरोप में बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। पूछा गया था किसी धार्मिक कथा को क्या आप आधुनिक परिच्छद में सजा सकते हैं? सेंट जोसेफ को मोटे लबादे में और वर्जिन के सिर को तुर्की शाल से सुसज्जित रूप में देखने की क्या कल्पना की जा सकती है? फिर भी प्राचीन चित्रकारों ने बाइबल के समस्त उपाख्यानों के चित्र को अपने युग की पोशाक में ही अंकित किया। ब्रजभाषा के कवियों ने भी युगल मूर्ति को अपने युग की भाव भाषा में अंकित किया है। इस बात के लिए आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। आज ज्ञान का प्रकाश सुदूर अतीत तक पहुँच सका है। आप खूब निपुण भाव से रामायण के युग के राम को अंकित कीजिए, पर भूल न जाइए कि आपकी यह कला विश्लेष युग की कला है। इसमें ज्ञान की उज्ज्वलता है, पर साधना की गंभीरता नहीं। भारतवर्ष में जो साधना शताब्दियों पर शताब्दियों की संघटना से अजंता और ताजमहल की रचना कर सकी है, वह साधना साहित्य के रूप में भी गठित हो उठी है। इस गठन में अपने युग की छाप है। इस छाप के लिए आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमने एक बार कहा था कि ब्रजभाषा का श्रृंगार साहित्य निरपेक्ष साहित्य है। पृष्ठ संख्या 107, अर्थात ब्रजभाषा का कवि कविता लिखकर निश्चिंत हो जाता है। उसे इस बात के सोचने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि समाज इस कविता से बनेगा या बिगड़ेगा। यद्यपि वह आज के कवियों की भांति चिल्लाता नहीं कि कला कला के लिए है, पर वह अपने को बहुत कुछ इस सिद्धांत का पोषक ही प्रकट करता है। केशव दास ने जिस दिन चंद्र वदनियों के बाबा कहने पर अपने सफेद बालों को कोसा था, उस दिन उन्हें स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं था कि किसी मृगलोचनी के लोचन इस कविता पर पड़ेंगे। निरपेक्ष भाव से यह साहित्य राधिका और कृष्ण को अपना प्रेम समर्पण करता है। आज के युग में और उस युग में बड़ा अंतर है। उस युग का कवि एक पूर्व निर्णित नियम को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर अपनी रचना करता है। वह अपनी प्रतिभा के दर्पण में अपने आप को नूतन रूप में देखने की चेष्टा नहीं करता। प्राचीनता का सदा सनातन सत्य के रूप में स्वीकार करके वह अपना संसार आरंभ करता है। आज का कवि अपने को नित्य नूतन रूप में प्रकट करने के लिए व्याकुल है। वह एक संकीर्ण सीमा तैयार करता है, दूसरे ही क्षण से तोड़कर दूसरी सीमा की रचना में व्यस्त हो जाता है। सीमा की इस अनवरत भंजन लीला को वह नित्य नूतन समझने लगता है। यही कारण है कि वर्तमान युग के अस्त व्यस्त काव्य समूह में एक अनवरत धारा का अभाव है। इसे एक धारा कहना ही अनुचित है। एक पंडित का कथन है कि विश्लेष का यह युग नाना विक्षोभ और समस्याओं से होकर गुजर रहा है। सब मिलकर एक बड़ी चीज को गढ़ लेना या समन्वय की चेष्टा इस युग में नहीं देख पड़ती। यूरोप में वर्तमान कला के बहुमुखी सौंदर्य को देखकर निश्चय ही विस्मित होना पड़ता है, पर यह कहना कठिन है कि अतीत और वर्तमान, सनातन और सामाजिक के भीतर समन्वय की एक चेष्टा न देखकर चित्त में क्षोभ नहीं होता। ब्रजभाषा के कवियों ने इस समन्वय के महत्व को समझा था। आप सूरदास से पद्माकर तक का ब्रज साहित्य देख जाइए, उसमें एक योग सूत्र पाएंगे, एक मर्यादा की प्रतिष्ठा देखेंगे। इस योग सूत्र का प्रधान आलंबन है युगल मूर्ति। वर्तमान युग की कविता की सबसे बड़ी समस्या है इस योग सूत्र का अभाव। इस यंत्र युग में एक दशाब्दी पहले की चिंताधारा के साथ आज की चिंताधारा का योग निर्वाह करने कराने की फुर्सत किसी को नहीं। इसका भयानक परिणाम यह हुआ है कि 100-125 वर्ष तक किसी एक चिंताधारा को जीवित देखकर वर्तमान समालोचक कांप उठता है। उसमें एक घृष्टता की गंध आने लगती है। वह न ग्रीक कविता की प्रशंसा कर पाता है और न ब्रज साहित्य की माधुरी पर मुग्ध हो सकता है। मगर मजा यह है कि वह कभी कभी इस प्रकार के साहित्य में वर्तमान युग की फिलॉसफी का एक ऐसा प्रकाश पाता है कि आकाश पाताल एक कर देता है। ब्रजभाषा के विपुल साहित्य में श्री कृष्ण और राधा रानी की अनंत माधुर्य लीला तो है, पर उसमें किसी आध्यात्मिक तत्व का निर्णय नहीं किया गया है। पृष्ठ संख्या 108। जो आलोचक आध्यात्मिकता पाते हैं उसकी बात हमारी समझ में नहीं आती। जो खोजते हैं कि उनकी चेष्टा का सफल होना असंभव जान पड़ता है, फिर भी ब्रजभाषा का घोर श्रृंगारी कवि यह कभी नहीं भूलता है कि उनकी वर्णित लौकिक लीला किसी अति प्राकृत की लीला है। ब्रजभाषा की कविता में यही विशेषता है जो उसे संसार के साहित्य से अलग कर देती है। बंगाल के वैष्णव कवियों में यह भाव है और आश्चर्य यह है कि इस प्रकार के साहित्य की भाषा को बंगाली में भी ब्रज बोली या ब्रज भाषा कहते हैं। मानो इस मधुर और विचित्र साहित्य का ब्रजभाषा साहित्य के अतिरिक्त और कुछ नाम ही नहीं दिया जा सकता। अति प्राकृत में प्राकृत सौंदर्य, सीमाहीन में ससी माधुर्य और अंतहीन में शांत भाव देखना ही इस कवि की साधना है। इसको वह अपने आप अनायास कर जाता है, क्योंकि वह उसी रंग में रंग गया है। भाषा कविता का वाहन है। ब्रज के कवि ने इस भाषा को ऐसा मांझा है कि वह जो कुछ भी कहता है उसमें न जाने कहां से युगल मूर्ति का शुभागमन हो जाता है। मध्य युग में संगीत के उत्कर्ष के समय मुसलमान उस्तादों ने जो गान बनाए उनमें राधा माधव जरूर आ जाते हैं। इस प्रकार की ब्रज भाषा सृष्ट हो गई कि लोग उसका अर्थ समझने की कोशिश किए बिना भी झूमने लगते हैं। पर जिन लोगों ने उस भाषा के जादू भरे उद्यान में पैर रखने की कोशिश कभी भूल कर भी नहीं की, वे कृष्ण और राधा की इस प्रेम मुखर भाषा में ईश्वर की दुर्दशा का आभास पाने लगते हैं। उपाय क्या है? ब्रजभाषा की कविता में कुछ विदेशी विलासिता का अस्तित्व भी है। बहुत संभव है उसकी आमदनी मुसलमानी संसर्ग से हुई हो, पर इस प्रकार की विलासिता में कवि राधा कृष्ण को कभी नहीं घसीटता। ऐसी विलासिता हमारे आलोच्य विषय के परे है, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ इस प्रकार की भी विलासिता राधा कृष्ण और गोपियों के नाम पर आ घुसी है कि उसे अनुचित कहने को जी चाहता है। प्रस्तुत प्रबंध श्रृंगार रस के नाम पर की गई अश्लील कविताओं की वकालत करने के लिए नहीं लिखा जा रहा है। आलोच्य विषय केवल ब्रजभाषा काव्य का ईश्वर है, इसीलिए ही हम इस प्रकरण की अवतारणा कर रहे हैं। ब्रजभाषा के युग में हमने अब तक देखा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति आ गई थी कि कविगण तटस्थ रूप से अपनी सारी हंसी खेल क्रीड़ा कौतूहल युगल मूर्ति में पर्यवसित कर दे। कवियों ने इस प्रकार के भाव चित्रण में अद्भुत सफलता पाई। रसिकों ने इस कविता का काफी सम्मान किया। ऐसा साहसी व्यक्ति शायद ही हो जो सूरदास या नंददास के ऊपर ब्रैकेट में जिन्हें ग्रियर्सन ने मध्ययुगीन मर्मियों के बर्नार्ड ऑफ क्लेरवा कहा है ब्रैकेट बंद भ्रष्टाचार फैलाने का अभियोग लगावे, परंतु सूरदास की कविता में राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का साम्राज्य है। नंददास भी इस प्रेम लीला की मस्ती में ही विभोर रहे। पृष्ठ संख्या 109। इधर गृहस्थ श्रृंगारी कवियों की तो गिनती ही नहीं। यह सारी कविता स्पष्ट है, सौंदर्य को ठोस रूप में उपलब्ध कराने का परिणाम यह हुआ है कि उसमें किसी रहस्य भावना या आध्यात्मिक रूपक का प्रभाव नहीं है। शैली या वर्ण सवर्थ के समान विशुद्ध प्रकृति का प्रेम ब्रजभाषा के कवियों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मिलेगी ससीम की लीला, मिलेगी शांत की क्रीड़ा। तंत्र साधना के उस आदर्श ने जिसमें सीमा को असीम की उपलब्धि का कारण बतलाया है, ब्रजभाषा के कवियों को बड़ी दूर तक प्रभावित किया था। उसकी माधुर्य के फल स्वरूप विष्णु का आसन कृष्ण के नीचे हो गया। गोलोक में सिवा कृष्ण के पुरुष का अस्तित्व जाता रहा। कृष्ण के प्रेमी राधिका की सखी हो गए। उस सख्य भाव से वह युग प्लावित हो उठा था। श्री कृष्ण के संबंध में की गई अनेक श्रृंगारी कविताओं में गोलोक की भावना ने यथेष्ट पुष्टि प्रदान की है। श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब राधा रानी की सेविकाएं सखियां। फिर संकोच काहे का व्यवधान कैसा। एक दूसरे प्रकार के भक्त थे जो अपने को कृष्ण का सखा समझते थे। इन्हें भी अपने रसीले मित्र की रहस्यमय कथाओं को सुनकर गाने का अधिकार था। यह सब होते हुए भी ब्रजभाषा का कवि केवल तटस्थ साक्षी है। सखियां आकर कृष्ण और राधा के मिलन विरह को नाना भाव भंगी से प्रकट कर जाती हैं और श्री कृष्ण के सखा या राधा ठकुराइन की सखी हमारे कवि कठपुतली के नाच के सूत्रधार की भांति केवल सूत्र खींचा करते हैं। अपना नाम शायद वे साक्षी के रूप में रख देते हैं। इस प्रकार के सापेक्ष निरपेक्ष द्वंद से कवि एक विचित्र सौंदर्य की सृष्टि तन्मय भाव से करता जाता है। भक्ति के प्रवाह में बहते समय भी वह तटस्थ है और श्रृंगार के सरोवर में स्नान करते समय भी वह तटस्थ है। इस मनोभाव को आप विचित्र कहना चाहें कहें, पर है यह अनुपम। इसी मनोभाव के साथ कवियों ने ब्रज भाषा साहित्य की सृष्टि की है। अब अगर इस विविध विचित्रता युक्त मनोभाव को बिना समझे कोई इस काव्य कानन में प्रवेश करेगा तो वह बार बार प्रश्न करेगा कि जिन्हें परम ब्रह्म समझा जाता है उनके नाम के साथ क्या कारण है कि हिंदी के कवि धृष्टता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बराबर करते रहे हैं। समाज के इस नैतिक पतन का क्या कारण है। इस तरह के साहित्य के प्रचार से समाज का उत्थान होना कैसे संभव है। हमारे जातीय या धार्मिक विकास में किन कारणों से यह घृणित प्रवृत्ति आ गई, और यदि आ भी गई है तो क्या कारण है कि इसके मूलोच्छेदन की चेष्टा समाज ने नहीं की। ये और इसी प्रकार के सैकड़ों प्रश्न उठेंगे। वह आश्चर्य से समाज की इस सहन शक्ति नहीं भक्ति प्रवणता को देखेगा। पर उस युग का समाज यह समाज अब भी लुप्त नहीं हो गया है, सौभाग्यवश कवियों के अनुकूल था। श्री कृष्ण के ज्ञान भक्ति कर्म के पूर्ण रूप में उसने उस माधुर्य को हृदयंगम करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं किया जिसे तात्कालिक कवियों ने समाज को दान किया था। पृष्ठ संख्या 110। श्री कृष्ण के उस रसमय विचित्र रूप पर उस समाज की प्रेम भक्ति केंद्रित हो गई थी। कृष्ण और राधा उनकी अपनी चीज हो गए थे और हैं। कृष्ण उनके साथ गाय दुहा करते थे, विरहा गाया करते थे, होली खेला करते थे, झूले में साथ ही झूला करते थे और उसके सभी प्रीति स्निग्ध कार्यों को अपनी मधुर वंशी से प्लावित कर देते थे। राधा भी दूर नहीं थी, नवोढ़ा के वासक शयनों पर वे फूल चुन दिया करती थी। आगमिष्यत पतिका के साथ वे प्रतीक्षा पथ पर आंखें बिछा देती थी। विरहणी के साथ वे आंसू की धारा से दिन और रात एक कर देती थी। कुमारी की मदिर आंखों में नट नागर की कलाबाजी सी करती आंखों को मिला देती थी। सखियों के साथ मिलन मधुर हास्य में वे अमृत ढाल देती थी। फिर भी राधा और कृष्ण परम शक्ति और परम पुरुष थे, इतने नजदीक अथच इतने विराट। जब तक समाज की इस मनोवृत्ति को आप नहीं समझेंगे आप उसी तरह चकित भाव से पूछ बैठेंगे और यदि ब्रैकेट में यह घृणित प्रवृत्ति ब्रैकेट बंद आ भी गई तो क्या कारण है कि समाज ने इसके मूलोच्छेद की चेष्टा नहीं की। समाज आपके प्रश्न को सुनकर भीत भाव से पूछ बैठेगा, कौन सी घृणित प्रवृत्ति, कैसा मूलोच्छेद। असल बात यह है कि 19वीं शताब्दी के बाद से हमारे नव विचार परायण पंडितों के हृदय में जहाँ तक तर्क की आग जल उठी है, वहाँ श्रद्धा भस्म हो गई है। आर्ट ओ आहिताग्नि ग्रंथ के प्रणेता श्री यामिनी कांत सेन ने गेटे से एक अंश उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि आज का तरुण युवक कहता है, मैं किसी कला संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। इस युग में कोई ऐसा जीवित मास्टर नहीं है जिससे मैंने कुछ सीखा हो। मृत व्यक्तियों से तो मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। इस युग का तारुण्य श्रद्धाच्युत हो गया है। आज हम 20वीं सदी के भारतीय तरुण गेटे के कथन के उदाहरण हैं। अश्रद्धा भाव से हम किसी साहित्य का ज्ञान संपादन करते हैं, समीक्षा करते हैं, बुरा या भला होने का फतवा देते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि उक्त साहित्य का उपजीव्य समाज हमारे ही जैसा तर्क परायण और अश्रद्धावान था। आगे हम ब्रजभाषा साहित्य के ईश्वर का जो विचार करेंगे, उसके लिए उसी ईश्वर की एक बात कह देना चाहते हैं। हे परंतप, इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखने वाले पुरुष मुझे न पाकर फिर से इस मरण धर्मा संसार मार्ग में लौट आते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, गीता अध्याय 9 श्लोक 2। ब्रज भाषा के कवि और युगल मूर्ति, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जे है न जे है न जे है। रस खान। पृष्ठ संख्या 111। कवि ठाकुर प्रीति करी है गोपाल सो, तेरी कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगे न लगे तो भले। ठाकुर। यही है ब्रज भाषा के मधुर कृष्ण। जरूरत समझो ईश्वर कहो, न समझो मनुष्य कहो, कवि का इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अपने प्रशस्त प्रेम के विपुलायत राजमार्ग पर वह निर्द्वंद निर्भय और शांत भाव से अग्रसर हो रहा है। तन्मयता के मधुर गीत को मानव चरित्र की ससीम मर्यादा में प्रतिबद्ध रख कर वह अनंत की ओर छूट चला है। उसके भगवान तटस्थ की भांति कहीं बैठे नहीं है। उसी के साथ प्रेम के नाना कल कल्लोलों से उसके मनोमंदिर को मुखरित करके उसी के साथ खेल रहे हैं। संसार में जिस प्रकार स्त्री अपने लौकिक प्रेम को पति के साथ केंद्रित करके बाकी जगत का अपने शुद्ध प्रेम से सिंचन करती है, उसी प्रकार यह कवि अपना लौकिक प्रेम मनमोहन पर केंद्रित करके शेष संसार को अपने प्रेम से प्लवित कर रहा है। उसके मोहन प्राकृत ही है, कुछ अति प्राकृत नहीं। प्रेम लौकिक ही है, अलौकिक नहीं। पर लौकिक प्रेम के विशुद्ध स्वरूप में अति प्राकृत के अलौकिक प्रेम की सत्ता रहती है। संसार में हम अनंत सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते। शांत का यथार्थ ज्ञान हमें अनंत सत्य की ओर उन्मुख कर देता है। अगर हमारी शक्ति अल्प है तो हमारा शांत भी छोटा होना चाहिए। जितना ही वह छोटा होगा, उतनी ही अधिक पूर्णता के साथ हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारा ज्ञान जितना पूर्ण होगा, जितना यथार्थ होगा, उतना ही हम अनंत सत्य का अनुभव कर सकेंगे। ब्रज भाषा का कवि इस रहस्य को समझता है। उसने अपने प्रेम का दायरा संकीर्ण कर लिया है। यह संकीर्णता विशालता की उपलब्धि के लिए है। नदी में जल अगर कम हो तो उसके दोनों कूलों का सटा सा रहना उसके प्रवाह को अधिक निर्बाध और प्रखर कर देता है। संकीर्णता से गंभीरता आती है, गंभीरता से शाश्वत रस। ब्रज भाषा के कवियों के इस रहस्य को अगर नहीं समझेंगे तो आपका मन नाना प्रश्नों की कुहेलिका में मार्ग भूल जाएगा। ब्रज गोप गोपिकाओं की विरह लीला, मिलन वैभव, रहस्य केली और उपालंभ में वह उस प्रेम के रूप का यथार्थ परिचय पाता है जो सहज गम्य है और जिससे सीमाहीन माधुर्य का साक्षात्कार होता है। इसकी परिधि संकीर्ण है, होने दो, लौकिक है, कुछ चिंता नहीं, मगर देखो उसमें यथार्थता है या नहीं। अगर क्षुद्र की ही सत्य उपलब्धि हो सकी है तो काम हो चुका है। जरूरत नहीं की विशाल विषयों का जाल बिछा कर बैठे और हाथ कुछ भी न लगे। ईश्वर क्या है? संयम का लक्ष्य, उपासना का उपजीव्य, ज्ञान का आश्रय, नेति नेति ने। पृष्ठ संख्या 112। ईश्वर क्या नहीं है? श्रृंगार रस का वह प्रेम जिसे नैतिकता के लक्षणों में नहीं ले आया जा सकता। देव विहारी मतिराम की वे बातें जिन्हें अश्लील कहने का प्रयत्न किया गया है। ब्रज बालाओं के मादक विरह का आश्रय, राधा का प्रेम प्रेमी सूरदास का श्याम क्या है? नेति नेति ने वह क्या बात है जिसके होने या न होने से ईश्वर का होना या न होना, सम्मानित या अपमानित होना निर्भर है? किस रास्ते से ईश्वर के मंदिर तक जाया जा सकता है, किससे नहीं? ब्रजभाषा का कवि इन प्रश्नों की निस्सारता को समझता है, उसे खूब मालूम है। बेदम से बेद मतवारे मतवारे परे, उसे सीधा सहज मार्ग मालूम है प्रेम। तत्ववाद के इस विकट युग में प्रेम की बड़ी खींचातानी हुई है। ब्रजभाषी कवि इन दुरूहताओं को नहीं जानता। उसका प्रेम स्फटिक की भांति उज्जवल है, उसी की तरह ठोस। आध्यात्मवाद की विकट गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न उसने किसी दिन नहीं किया। उसकी प्रेम धारा विशाल नद नहीं है, संकीर्ण नाला है, पर गंभीर तेज पूर्ण। उसे इसका अभिमान है। वह अपने मार्ग में निर्भीक भाव से प्रेम की मशाल लिए बढ़ रहा है। कवि ठाकुर प्रीति करी है गोपाल सो, तेरी कहो सुनो ऊंचे गले। कितनी दृढ़ है यह निष्ठा, मानो वह वर्तमान युग के कवि के कंठ में कंठ मिलाकर कहना चाहता है, वैराग्य साधना में मुक्ति है, हम इस मुक्ति को नहीं चाहते। असंख्य बंधनों में रहकर महा आनंदमय मुक्ति का स्वाद लेंगे। इस पृथ्वी की मिट्टी के पात्र को बारंबार भरकर ब्रैकेट में हमारी यह महा आनंदमय मुक्ति ब्रैकेट बंद तुम्हारे नाना वर्ण और गंध को अविरत ढाला करेगी। समस्त संसार को प्रदीप की नाई लाख लाख वर्तिकाओं में जलकर प्रकाशित कर देगी। रविंद्रनाथ ठाकुर नैवेद्य इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। वैराग्य के विपुल भार से जर्जर इस देश के अंतस्तल में सहज प्रेम की निष्ठा को प्रज्वलित किया है इन ब्रजभाषा के कवियों ने। कैसा वैराग्य कैसा योग, शत शत गोपियों के कल कंठ से योग साधना के विरुद्ध अधिकार पूर्ण बातें भारत वर्ष में अगर सुनने को मिली है तो युगल मूर्ति के प्रेम में मतवाले इन कवियों की कृपा से। कहाँ है विरह का यह उमड़ता हुआ स्रोत अन्यत्र? इस विशाल विरह वेदना पर शत शत मेघदूत न्यवछावर है, हजार हजार ताजमहल निसार है। इसी विपुल समुद्र को ईश्वर का अपमान कहते हैं आप, कहिए। पर भूल न जाइए कि मध्य युग का ईश्वर आज का ईश्वर नहीं है। एक तरफ है सहस्त्राधिक संप्रदायों के साधुओं के उपास नीरस निष्काम निर्गुण ईश्वर, और दूसरी तरफ है यह प्रेम का उद्गम माधुर्य की सरिता, भक्ति का समुद्र, सौंदर्य का सर्वस्व, राधा माधव की युगल मूर्ति। आपको पसंद हो तो पहले को लेकर वैराग्य साधना कीजिए। पृष्ठ संख्या 113। ब्रजभाषा के कवियों और रसिकों को वह पसंद नहीं। योग की साधना व्यर्थ है उनके लिए, वे साफ कहते हैं। जिन जान्यो जोग तौ जोग लई जरी मरौ देव। उद्धव को गोपियों ने जो संदेशा दिया है वह इतना साफ है कि उसमें आध्यात्मिक गूढ़ताओं का ढूंढना बेकार है। मगर उस विशाल में वेदना के अध्यात्महीन होने से अध्यात्म का जगत इतना निकट आ जाता है कि आश्चर्य होता है। मेघदूत के अमर संगीत का सौंदर्य क्या है? विराट मानव का सनातन विरह, युग युगांतर का पूंजीभूत विरह प्रतिनिधि कवि के कंठ में शाश्वत रूप धारण कर गया। ताजमहल का सौंदर्य कहाँ है? पत्थरों में होगा, पर वास्तविक सौंदर्य उसका है वह उस शाश्वत विरह में। प्रेमी हृदय के उच्छ्वास ही पाषाण से फूटकर सौंदर्य का रूप धारण कर सके हैं। और ब्रज की इन गोपियों के मादक विरह का सौंदर्य कहाँ है? गोपियों में, उद्धव में नहीं। उसका सौंदर्य उसी मधुर कल्पना में है जिसने वासुदेव देवकी पुत्र कृष्ण को आनंद कंद मनमोहन के रूप में उपस्थित किया है, जिसने प्रेम की साक्षात मूर्ति इन अभीर न्याओं की सृष्टि की है। कितनी विराट कल्पना है पर कितनी कोमल। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावई, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। इसे आध्यात्मवाद कहना चाहते हैं। एक यूरोपियन कला के मर्मज्ञ का कहना है कि यूरोप का आधुनिक आध्यात्म साहित्य काव्य या आर्ट में कहीं भी एक परिपूर्ण सामंजस्य के साथ आत्मा का सहज संपर्क नहीं स्थापित कर सका है। अतीन्द्रिय जगत की ओर जरूरत से ज्यादा खिंचाव होने के कारण वहाँ इंद्रिय जगत की ओर विशिष्ट प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकी है। एवं अस्तु, अगर यूरोप के आध्यात्मवाद की सचमुच यह दशा है हमें ठीक पता नहीं, तो कृपा करके इस आध्यात्मवाद से ब्रज के आध्यात्मवाद की अगर नितान्त प्रयोजनीय नहीं समझते हो तो तुलना न कीजिए। कहाँ रूखा आध्यात्मवाद और कहाँ यह प्रेम प्लावित माधुर्य। कह धनुकुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मनमोहन के इस मिलन विरह में कहीं भी तुरीय अवस्था की ओर इशारा नहीं किया गया है, इसीलिए इसका माधुर्य अनुपम है, अवर्णनीय है। इसमें ईश्वर की धर पकड़ अगर न भी की जाए तो कोई हानि नहीं, रस का परिपाक उसी मधुरता के साथ होगा। मनमोहन के बिछड़े सजनी अजहू तो नहीं दिन द्वे गए हैं, सखी वे तुम वे हमें वे ही रही, पै कछु के कछु मन हवे गए हैं। पद्माकर। पृष्ठ संख्या 114। अगर ब्रज का कवि इसी भाव को बार बार दोहराता हुआ जीवन काट दे और मनमोहन के केवल इसी अंश का पर्याप्त और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह अपनी साधना को सफल समझ लेगा। यह क्या साधारण बात है, सब है मगर कुछ खो सा गया है। परियुत्सुकी भवति यत सुखितो अपि जंतु। यह ठीक है कि इसका दायरा संकीर्ण है, पर क्या हुआ इसे, वह विराट की उपलब्धि के लिए तो मर नहीं रहा है, उसकी साधना तो सरस उपलब्धि की है। वह उसे मिल गई, उसका मधुर उसका मोहन मिल गया, तत्ववाद जाए भाड़ में, इसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ब्रजभाषा के कवियों का ईश्वर मधुर और सुंदर तो है, लौकिक विधि निषेध के परे भी है, वह विधि का विधाता है, पर है घरेलू मित्र। श्री कृष्ण के इन दोनों रूपों का सामंजस्य ही ब्रजभाषा काव्य की विशेषता है, वही मॉडर्न माइंड से अगम्य भी है। विधि के विधाता मानव की लीला ब्रजभाषा का कवि सहज ही कह जाएगा, और अगर आपने कृष्ण के इस सामंजस्य को नहीं समझा है तो घृणा तक करने लगेंगे आप, चकित की भांति ताकते रहेंगे और युगल मूर्ति की पद धूलि का मतवाला भिखारी सूरदास गा उठेगा, ऐसे जानी बोलहू नंदलाला, छाड़ी देहू अचरा मेरो, नीके जानत और सी बाला, बार बार मैं तुम्ही कहती, हौ परिहौ बहुरी जंजाला, जोबन रूप देखी ललच ने अबही ते ये ख्याला, तरुणाई तन आवन दीजे कत जिय होत बिहाला, सूर्य श्याम उरते कर टारहु टूटे मोतिन माला। क्या कहते हैं आप, सूरदास के समान भक्त के हृदय में ऐसी गंदगी और विलासिता कहां से आ गई? आनंद कंद श्री कृष्ण और श्रीपति राधा रानी के रहस्यमय केली से। भक्त की उस साधना को संसार में लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस तरह के प्रश्न करेंगे, समझ लेने पर स्वयं अपने आप से ही पूछेंगे कैसी गंदगी कैसी विलासिता। भगवान बुद्ध देव ने पूछने पर एक बार बताया था कि तथागत का धर्म उसकी मृत्यु के हजार वर्ष बाद तक रहेगा, इसके बाद विकृत हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, वह युग ही ऐसा था जो अविचलित चित्त से एक साधना को अनायास ही वर्षों तक वहन कर सकता था। पर 20वीं शताब्दी के बुद्ध महात्मा गांधी से पूछिए कि आपका धर्म कितने दिनों तक रह सकेगा, विश्वास के साथ वे 100 वर्ष भी नहीं कह सकेंगे। स्वामी दयानंद को मरे 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं कि उनके महान आदर्श पर स्थापित विधवाश्रम क्या से क्या हो गए। यही है हमारा नैतिक समुत्थान का युग, और 20वीं शताब्दी की इसी प्रबुद्ध नीतिमत्ता का मुकुट पहनकर हम घृणा भरी आंखों से ग्रीक कलाकारों को डांट देते हैं। बर्बर ग्रीक, अपने उपासियों की यह नग्न प्रतिमा, देवी देवताओं का यह जघन्य अंकन। पृष्ठ संख्या 115। इजिप्शियनों की चित्रकला देखकर गरज उठते हैं, असभ्य इजिप्ट। राज हरमेन में नग्न परिचारिकाएं और उनका चित्रण। फारस के कवि पर आंखें तरेर कर कहते हैं, विलास पंक में निमज्जित कवि और सुराही तेरी आराध्य देवी है। संस्कृत के कवियों पर बरस पड़ते हैं, देववाणी के पवित्र मंदिर को अश्लील पंक से पंकिल करने वाले कवि, यही तेरी कला है। धिक। ब्रज भाषा के कवियों पर टूट पड़ते हैं, भ्रष्टाचार के प्रचारक कवि, अपने उपास्य देव के नाम पर तूने यह गंदगी फैला रखी है, धिक्कार है। और फिर अपनी प्रबुद्ध नैतिकता की मशाल लेकर आगे बढ़े चले जाते हैं, मानो अतीत और भविष्य के निबिड़ अंधकार को दूर करने के सिवा इस युग के जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। यह बात विज्ञ मंडली को बताने की जरूरत नहीं है कि श्रद्धा और प्रेम निकृष्ट से निकृष्ट आचरण में उत्कर्ष दिखा देता है, अश्रद्धा और घृणा से उत्तम वस्तुएं घृणित हो जाती है। सभी धर्मों में आप कुछ न कुछ ऐसी बातें देख देखेंगे जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा कि धर्म के नाम पर यह क्या अनर्थ है। पर उस धर्म के अनुयायी की सश्रद्ध दृष्टि से उसी बात को देखिए, आप जान सकेंगे कि यह अनर्थ नहीं है। ब्रजभाषा के कवियों के कृष्ण भी ऐसे ही हैं। आप जिसे गंदगी कहकर घृणा से आँख फेर लेते हैं, उसी में वह युग प्रेम का स्रोत बहता देखता है और सिर आँखों चढ़ा लेता है। राधा और मोहन के नेह में भी संदेह, ब्रज का कवि आपकी इस बात को समझ ही नहीं सकेगा। वह चकित की भांति पूछेगा, युगल मूर्ति का नेह भी किसी को अच्छा नहीं लगता? आप अगर कहे हाँ तो वह विस्मित हो जाएगा, कह उठेगा, धूल डाल दो उसकी आँख में जो इसमें कलुष प्रवृत्ति देखता है। एक मुट्ठी नहीं, हजार मुट्ठी, 10,000 मुट्ठी, राधा मोहन लाल कौ जिन्हें न भावत नेह, परियव मुट्ठी 1010 तिनकी आखिन खेह। मतीराम, क्या कहेंगे आप इस ईश्वर को, इस भावना को, इस विश्वास को? पागलपन, छीछा लेदर, ना, कृपा करके यह न कहिए। उस रहस्यमय ईश्वर को समझने की कोशिश कीजिए। कवि की आँखों से ही एक बार उसके मदन मोहन को देखिए। उस आखिन में राखिबे जोग को समव्यथित्व सिंपैथी के साथ देखिए। देखिएगा वासुदेव और आभीरों के बाल देवता के इस संयुक्त संस्करण के चारों ओर ठोस प्रेम की कितनी जमावट आ जमी है। अति प्राकृत का रूप कितना प्राकृत हो गया है। देखिएगा राधा रानी के विशुद्ध काल्पनिक रूप के चारों ओर कितना सरस प्रेम, सहज सौंदर्य घनीभूत हो उठा है। शून्य को जकड़ कर किस मधुर स्नेह का स्तूप तैयार हो गया है। गोपियों को देखिएगा प्रेम की असंख्य प्रतिमाओं के रूप में। यह ईश्वर उस कवि का सखा है। अपनी विरह वेदना को उसके चरणों में समर्पित करके वह धन्य हो जाता है। अपनी पुलक व्यथा को उसे भेंट कर वह कृतार्थ हो जाता है। पृष्ठ संख्या 116। वह गाय होकर भी रह सकेगा यदि उस सांवरे मीत का दर्शन हो जाए। वह पक्षी बनना भी अच्छा समझेगा यदि प्रिय का केली कदम उसका बसेरा हो सके। वह पत्थर भी बन सकेगा यदि उस लीलामय की उंगलियों का स्पर्श कर सके। क्या कहेंगे आप इस तन्मयता को? बाल गोपाल की कारी कमरिया पर वह तिहुपुर को राज वार कर सकता है। नंद की गायों की चारवाही करने का अवसर मिल जाए तो आठों सिद्धि और नौ निधि को वह अनायास ही ठुकरा सकता है। कोटि कोटि कल धौत के धाम वह उन करीर के कुंजों पर नेवछावर कर सकता है। यह है उसकी गहन साधना। पर यही स्वर्ग और अपवर्ग को ठुकरा देने वाला कवि आपको आश्चर्य में डालकर गा उठता है। रोकत हूँ वन में रसखानी चलावत, हाथ घने दुख पे हूँ, जे है जो भूषण काहू तिया के, तो मोल छला के लला न बिके हूँ। हासी में हार हरौ रसखानी, सूजो कहूँ नेकू तगा टूटी जे हैं, एक ही मोतिन के मोल लला, सिगरे ब्रज हाटक हाट बिके हैं। यही है ब्रज के कवि की मधुर और विषम साधना। आप कहेंगे इस साधना में अश्लीलता है, जरूर है। लोक धर्म बन जाने पर कौन सी ऐसी साधना है जिसमें कलुष वृत पुरुष न आ घुसे हो? परंतु सारी ब्रज भाषा की कविता में आप मुश्किल से ऐसी एक आध अश्लील कविता पाएंगे जिसमें युगल मूर्ति की मर्यादा के प्रति श्रद्धा का भाव न हो। कवि सब कह जाएगा मगर एक मर्यादा के प्रति श्रद्धा रख कर, यह क्या मामूली साधना है? प्रेम के उच्चतम स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक मर्यादा के प्रति एक निष्ठा, सो भी कितने दिनों तक, 150 वर्ष नहीं, कम से कम 1 सहस्राब्दि तक। संसार का यह विचित्र रहस्य है कि प्रेम की आंखों से देखने से जो बात जितनी ही आकर्षक होती है, घृणा की नजरों से देखने पर वह उतनी ही गर्हित प्रायः देखा जाया करता है। कि धार्मिक आक्षेप करने वाले उन्हीं बातों में अधिक दोष देखते हैं जिनसे उस धर्म के अनुयायी अधिक प्रेम करते हैं। ईशा के मेष पालन रूप में करुणा का जो स्त्रोत फूट पड़ा है, ईसाई धर्म के आलोचकों को उसी में भेड़िया धसान दिखाई देता है। बुद्ध देव ने संसार की क्षण भंगुरता पर बड़ा जोर दिया था। सहस्त्र सहस्त्र बौद्ध भिक्षुक संसार की इस क्षणिकता को शाश्वत के रूप में परिणत करने के लिए गृह त्यागी हो गए, पर बौद्ध दर्शन के विरोधियों ने इस पर सहज पील पड़ने की कृपा ही नहीं की, बल्कि इसके अतिरिक्त उनकी राय में बौद्ध धर्म का और कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। विरोधी दर्शनों में बौद्ध क्षणिकवाद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हिंदुओं ने मूर्ति पूजा के प्रति अपनी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा व्यक्त की थी कि धन रत्न सर्वस्व उस पर चढ़ा दिया था। आक्रमणकारी मुसलमानों मुसलमानों को यही बात सबसे अधिक खटकी। आज अगर कोई हिंदू धर्म का उपहास करना चाहे तो उसे इन कवियों की कीर्तियों में काफी मसाला मिलेगा। पृष्ठ संख्या 117। उपाय क्या है? आज से कम 2500 वर्ष पहले देवदेव वासुदेव का आविर्भाव हुआ था। तब से अब तक संसार के विविध उत्थान पतनों के बीच से गुजरते हुए श्री कृष्ण ने नाना भाव से विचित्र आकार ग्रहण किया है। ज्ञान की सर्वोत्तम प्रतिभा गीता का प्रवचन करा के उन्हें जहाँ विशुद्ध ज्ञान के सिंहासन पर बैठाया गया है, वहीं गोपियों के प्रेम की आश्रय भूमि बनाकर उन्हें प्रेम राज्य का सर्वस्व स्वीकार कर लिया गया है। बुद्धि और भाव, इंटेलेक्ट और इमोशन के अवतार 2500 वर्ष की विपुल साधना के साध्य को अगर लोग उपहास की फूंक से उड़ा देना चाहते हैं, तो उचित तो नहीं कर रहे हैं, और चाहे जो करते हो। इस 2500 वर्ष तक की एकांत निष्ठा को छीछा लेदर कहते हैं। कीमाश्चर्य मतः परम। आज हम कविता के विशुद्ध प्रकृति प्रेमी हो गए हैं और धर्म में विशुद्ध ईश्वर प्रेमी। यह प्रेम हम प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं, नैतिकता के लिए कर रहे हैं। शीलर कहते हैं, दिस काइंड ऑफ प्लेजर एट द साइट ऑफ नेचर इज नॉट एन एस्थेटिक प्लेजर बट ए मोरल वन, फॉर इट इज अराइव्ड एट बाय मींस ऑफ एन आइडिया। व्हेंस कम्स दिस डिफरेंट सेंस? हाउ इज इट दैट वी हु इन एवरीथिंग रिलेटेड टू नेचर आर इनफीरियर टू द एंशिएंट्स शुड पे सच होमेज टू हर, शुड क्लिंग सो हार्टली टू हर एंड बी एबल टू इम्ब्रेस द इनेनिमेट वर्ल्ड विथ सच वार्मथ ऑफ फीलिंग। इट इज नॉट आवर ग्रेटर कन्फॉर्मिटी टू नेचर बट ऑन द कंटेंट्री द अपोजिशन टू हर विच इज इनहेरेंट इन आवर कंडीशंस एंड कस्टम्स दैट इम्पल्स अस टू फाइंड सम सेटिस्फेक्शन इन द फिजिकल वर्ल्ड ब्रैकेट स्टार्ट। प्रकृति में इस श्रेणी का आनंद हम सौंदर्य बोध की ओर से नहीं पाते हैं नैतिकता की ओर से, क्योंकि यह एक विशेष धारणा से प्राप्त हुआ है। किस प्रकार प्राचीन लोगों की ओर हमारी धारणाओं में अंतर आ उपस्थित हुआ। जहाँ तक प्रकृति के संबंध है, हम उससे निम्नतर ही हैं, फिर भी हम प्रकृति को अपना अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, अनुभूति की ओर से जड़ जगत को आलिंगन करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यह प्रकृति के साथ हमारे बृहत्तर योग से नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे इसलिए हो सका है कि आचार व्यवहार में हम प्रकृति के विरोधी हो गए हैं और आज उसी भौतिक जगत के भीतर कुछ संतुष्टि खोजने की चेष्टा हो रही है। ब्रैकेट क्लोज। शीलर के इस कथन में प्रकृति के साथ ईश्वर को भी जोड़ देने की जरूरत जान पड़ती है। ब्रजभाषा कविता पर विचार करते समय हमें ईश्वर प्रेम के इस आधुनिक दृष्टिकोण का सहारा नहीं लेना चाहिए।